سلام.
علیکم سلام.
اتنی دیر کیوں لگا دی؟
امی وغیرہ سو گئے سب؟
جی ہاں.
تم کیوں نہیں سوئی؟
سریا پھپھو کے پاس تھی.
اچھا ٹھیک ہے, چلو اب سونے چلتے ہیں.
مہدی, آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے؟
کس کے پاس؟
سریا پھپھو کے پاس.
کس لیے جاؤں؟
جا کے ان کا حال احوال پوچھ لیں. صبح سے اب تک 10 بار آپ کا پوچھ چکی ہیں.
ابھی تھکا ہوا ہوں.
چاہیے مہدی, وہ بیچاری صبح سے تھوڑا تھوڑا سو کے بار بار آئی ہیں تاکہ آپ کو دیکھ سکے. آپ اتنے کینے والے انسان تو نہیں تھے. دادی جان کہہ رہی تھی کہ مہدی حتیٰ سریا پھپھو کے چہرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے.
نہیں جا سکتا پرسو, واقعی میں نہیں جا سکتا.
کیوں؟ جب آپ کی امی انہیں معاف کر سکتی ہیں تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے.
مجھ پر آگ لگانے کا الزام لگانا اور مجھے تھپڑ مارنا, میں یہ سب کچھ بھول سکتا ہوں, لیکن اس دن جب میں ان کے گھر گیا, انہوں نے میرے باپ کے بارے میں جو باتیں کہیں, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا.
بری بات ہے مہدی, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. شاید آج زندہ ہیں اور کل نہ رہیں. اس وقت اکیلی ہیں, اپنے دل کو صاف کر کے جائیے.
ابھی نہیں, کل صبح.
کل صبح نہیں ہو سکتا مہدی, سب جاگے ہوں گے. ان کے کمرے میں جائیے تاکہ اگر ان کو کوئی بات کرنا ہو تو کر سکیں.
ہما پھوبھی کہاں ہیں؟
کہہ رہی تھی رات کو نہیں آئیں گی, آج ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے.
السلام علیکم. اٹھیے نہیں, میں جاتا ہوں, کل آ کے مل لوں گا. لیٹی رہی.
نہیں, آ جاؤ یہاں, آ جاؤ, تم سے کچھ بات کرنی. آ جاؤ, آ بیٹھو یہاں. جانتی ہوں میں کہ اس دنیا میں بہت سخت حساب ہوگا.
ایسا مت کہیے, اس دنیا کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے.
مجھے خبر ہے, میں نے وہ سب برائیاں کی ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. تم اچھی طرح جانتے ہو. اس گھر کو دیکھنے کے بعد دوبارہ میں پریشان ہو گئی. سب برائیاں میرے سامنے آ گئی. جب سے آئی ہوئی ہوں میں ایک رات بھی سو نہیں سکی ہوں. اپنے گھر میں ہی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا. کاش تم مجھے اسپتال نہ لے گئے ہوتے.
ایسی باتیں نہ کریں, موت کی آرزو کرنا ناشکری ہے. زندگی خدا کی نعمت ہے.
وہ نعمت کی جس کا میں نے فائدہ نہیں اٹھا. میری زندگی ایک کفران نعمت تھی. خدا نے میری رہنمائی کی, بہت کوشش کی, لیکن بار بار کوئی میرے کان میں کہتا تھا سریا جا کے انہیں پریشان کرو, ان کو इनको इतना सताओ कि यहाँ से चले जाए। अरे
क्यों क्यों हमारे साथ इतनी बुरी थी? मेरे साथ, मेरे अबू के साथ, अम्मी के साथ?
क्योंकि समझती थी कि मोहसिन हमारी जुदाई का सबब बना, असदुल्ला ने दूसरी शादी की, मैं अकेली।
लेकिन इस बात का मेरे वालिद के साथ क्या ताल्लुक था?
अगर असदुल्ला को पता ना चलता कि मोहसिन नेमत का अपना बेटा नहीं, तो शायद वो सारी उम्र यही सोचता कि हमारे बच्चे ना होने का जिम्मेदार वो है और मैं सेहतमंद हूँ। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो मुझसे कहा कि सुरैया मसला तुम में, उसके बाद मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, लेकिन उससे भी बच्चे नहीं हुए। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरे तना होने का कसूरवार मोहसिन है, लावारिस और मनहूस बच्चा, यही मेरी जिंदगी के तबाही से तबाही का बाइस बना। इसीलिए मुझे उसे नफरत थी, मेरे हाथ में नहीं था, मुझे वो बुरा लगता, तुमसे भी इसीलिए नफरत करती थी कि उसके बच्चे। उस वक्त उसी के बच्चे ने, उसी शख्स के बच्चे ने मुझे नजात दी, मुझे माफ कर दो। मेहदी बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
मैंने बहुत पहले आपको माफ कर दिया था।
जबान से नहीं, दिल से माफ कर दो, मुझे सुकून से इस दुनिया से जाने दो। जब तक माफ नहीं करोगे मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी माफी की हसरत देके इस दुनिया से चली जाऊं।
अभी तो हम यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसी बातें ना कीजिए। खुदा से मौत मत मांगिए, उनसे जिंदगी मांगिए, सलामती मांगिए, उनसे मोहलत मांगिए कि कुछ अरसा यहाँ एक साथ रहें। हर इंसान किसी न किसी दिन माजी के अमाल का इजाला कर सकता है।
कहो कि मुझे माफ कर दो, तहे दिल से कहो कि मेरे दिल को आराम मिल जाए।
मैंने आपको माफ कर दिया सुरैया साहिबा।
सुरैया साहिबा नहीं, भूपी को, भूपी को।
मैंने आपको माफ कर दिया सुरैया भूपी, तहे दिल से।
ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है बेटा, सबसे खूबसूरत रात।
अरे तुम यहाँ हो?
सलाम अलैकुम दादी जान।
सलाम बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यहाँ होगे।
मैं आया था यहाँ सुरैया फूफी के साथ बातें कर रहा था कुछ।
ये तुम्हारी फूफी सुरैया मुसलसल रोती रही है, रात को जब आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ बैठकर रो रही है। बेटा इसे कहो कि इतना न रोए, बूढ़े इंसान के लिए रोना अच्छा नहीं है, इनकी आंखें कमज़ोर हैं, खुदा न खास्ता अंधी हो जाएंगी। हाँ अब तुम जाओ सो जाओ।
जी अच्छा।
जाओ सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, जब तक यहाँ बैठी रहेंगी मैं भी बैठा रहूँगा। जाओ तुम बेटा, जाओ। शाबाश।
नहीं ऐसा ना करो मेहदी बेटा, मुझे इससे ज़्यादा शर्मिंदा ना करो।
शब बखैर।
खुदा सलामत रखे बेटा।
शब बखैर बेटा।
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو می باید ساخت و از نو آدمی.
اب اور کچھ تو نہیں ہے؟
नहीं, बहुत शुक्रिया।
नीसम है, तुमने उसे बुलाया है?
हाँ, मैंने कहा है कि आगे अपना सामान समेटो।
शाइस्ता, तुम्हें बच्चों के सामने खुद को काबू में रखना होगा।
कब तक, आखिरकार कब तक?
अस्सलाम
वालेकुम। सलाम बेटा, कैसे हो मेरी जान? ठीक हो?
ठीक हो।
जल्दी जल्दी को सामान अपना समेटो जल्दी से।
अबू सफर से कब लौटेंगे?
पता नहीं बेटा, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए।
अम्मी से बात करो ना कि अबू से सोल करें ताकि वो जल्दी वापस आ जाए।
ठीक है, मैं कह दूंगा, तुम जाके अपना सामान समेटो, जल्दी करो, जल्दी देर हो रही है। जाओ, शाबाश।
मैं कल जाकर तलाक की दरख्वास्त देना चाहती हूँ, तुम आओगे मेरे साथ?
जल्दबाजी में फैसला ना करो शाइस्ता, मुझे यकीन है फरहाद कातिल नहीं है।
क्या फर्क पड़ता है, अब मैं उसके साथ मजीद नहीं रह सकती।
अपने बच्चों का सोचो।
ये चंद साल सिर्फ बच्चों के लिए सोचा है, खुद को अनजान बनाती रही क्योंकि उनकी फिक्र थी, लेकिन अब नहीं कर सकती। अब मजीद फरहाद को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हद अगर कत्ल ना भी हो।
बेटा जल्दी करो मिसम।
मोबाइल ये मेहरान का है,
सो रहा है।
हाँ, कब से सोया हुआ है, जाओ उसे दे दो ताकि जल्दी उठे।
अम्मी जान।
हाँ बेटा।
असली साहब आए
तो जाके उसे दे दो, खुश हो जाएगा।
मेहरान, मेहरान, मेहरान।
हेलो, सलाम अलैकुम।
उठ गया, बात भी की,
कुछ समझे नहीं क्या बात की?
नहीं, बाहर आके ताकि वो आराम से बात कर सके।
तुम्हारे ख्याल में दोबारा मान लेंगे? अलबत्ता मुझे तो बईद ही लगता है, दिल नहीं मान रहा है। लड़की राजी भी हो तो असली साहब नहीं मानेंगे।
कौन मानता है अम्मी जान, अगर अबुआ तो मान लेते।
क्या कहूँ, सब कुछ अपने ही हाथ का किया धरा है ना।
खुदा करे उनकी सुलह हो जाए।
खुदा करे, कम अज कम मेरे बेटे के ये बुरे दिन खत्म तो हों।
मेरे ख्याल में जरूर सुलह ही करना चाहती है, वरना फोन क्यों करेगी? फोन थोड़ी करना है ना।
अम्मी जान मैं जरा बाहर जा रहा
हूँ। खाना खाए बगैर जा रहे हो?
भूख नहीं है, आप खाना खा लें।
ठीक है, तुम जाओ, खुदा सलामत रखे।
खुदा
हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र मिल नहीं गया है।
तुम्हें यकीन है?
हाँ बिल्कुल, देखा नहीं कितनी जल्दी में था।
खुदा करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह।
अब तो शादी के लिए कपड़े भी सिलवाने होंगे। परस्तु को बताऊं? फोन करके बताऊं मैं परस्तु को अम्मी जान?
अरे भाई पहले पता तो चल जाए कि हुआ क्या।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो?
शुक्रिया।
तुम्हारे फोन के फौरन बाद निकल आया, माफ करना देर हो गई।
कोई बात नहीं।
क्या कुछ हुआ है, कोई बुरी खबर सुननी पड़ेगी?
बैठो। तुम्हारी पेशी हो चुकी?
हाँ।
अच्छा, तो क्या हुआ?
कुछ नहीं, आज कल में फैसला आ जाएगा।
तुम्हारे ख्याल में फैसला क्या होगा?
नहीं मालूम, शायद जेल, जिसे जमानत के बदले खरीदा जा सके।
سچ بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے مستقبل کے بارے میں عدالت کے فیصلے کے بعد آ کر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس رات جب تم نے فون کیا تو سوچا کہ جلدی سے آ کر تم سے بات کر لوں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ رضوانی صاحب کے رشتے مانگنے کی بات صحیح ہے، انہوں نے فون کر کے ابو سے اجازت مانگی ہے، گھر آئے۔
آ رہے ہیں کیا؟
نہیں، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کسی اور سے شادی کا ارادہ نہ ہو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی مہران، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میری شادی ہو، میرے بچے ہوں، لیکن اس سلسلے میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں، جب زندگی میں جھوٹ داخل ہو جائے نا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
میں نے تم سے کچھ چیزیں چھپائی ضرور، لیکن تم سے جھوٹ نہیں بولا نازنین۔
نہیں مہران، تم خود جانتے ہو کہ تمہارے جھوٹوں کی بس توجیہ ہے، توجیہ اچھی بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو نازنین، لیکن مجھے ایک اور موقع دو۔
نہیں دے سکتے، واقعی میں نہیں دے سکتی، کیونکہ اب تم پہ بھروسہ نہیں۔ میں کیسے یقین کر سکتی ہوں کہ اس کے بعد تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے یا مجھ سے کچھ چھپاؤ گے؟ نہیں،
یعنی تمہاری منطق میں انسان غلطی نہیں کر سکتا، یا اگر غلطی کرے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا؟ یہ بتاؤ کہ میرے بعد آپ کی زندگی میں جو بھی آئے گا وہ غلطی نہیں کرے گا، اور اگر غلطی کرے گا تو اسے بھی چھوڑ دو گی؟
مہران، میں کتنی بھی کوشش کروں اپنے کو منا نہیں پا رہی کہ تمہاری باتوں اور حرکتوں کو نظر انداز کروں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو لوگ بھی نہیں مانیں گے کہ تمہارے جیسا آدمی ہماری فیملی میں آئے۔ میں تمہیں بلانا چاہتی ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی مجھے بلا دو۔
نہیں بلا سکتا،
مجھے اس دن کے اپنے برتاؤ کی وجہ سے آپ کے والدین کو سوری کہنا ہے، میری طرف سے آپ معذرت کر لینا۔ میں واقعی میں اس دن باہر آ کر نہیں مل سکتی تھی، ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی، نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ مجھے معاف کر دو، جہاں بھی رہو خوش رہو مہران۔
میں تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکتا نازنین۔
امید ہے کہ عدالت تمہیں کم سے کم سزا سنائے۔ خدا حافظ ہمیشہ کے لیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
گھر کیوں نہیں آئے؟
بیٹھو۔ تم ٹھیک ہو؟
ٹھیک ہوں۔ میں نے پوچھا گھر کیوں نہیں آئے، تم کیوں دوبارہ آفس میں اپنا کام شروع نہیں کرتے؟
کس لیے واپس آؤں؟
کیونکہ یاسمن اب وہاں سے چلی گئی ہے۔
میں نے خود فرامن سے بھی کہا تھا کہ میرے یہاں سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
ہاں، تم نے کہا تھا کہ تمہیں یہ بات بہت بری لگی ہے کہ تمہارے اصرار کے باوجود ڈیڈی نے فرمین کو نہیں نکالا، تمہاری ناراضگی بجھا تھی۔ لیکن اب فرمین اس آفس میں کام نہیں کرتی، اور میرے ڈیڈی سے تمہاری ناراضگی کی اب کوئی وجہ نہیں بنتی۔
میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا کہ تمہارے ابو نے فرمین کو نہیں نکالا یاسمین، میں تمہارے ابو کی باتوں سے ناراض ہوا تھا۔
بھلا ڈیڈی نے ایسا کیا کہا تھا؟ بتاؤ گے؟ نہیں۔
کیوں نہیں، اس لیے تو تمہیں یہاں بلایا میں نے۔
اچھا، تو بتاؤ ڈیڈی نے کیا کہا تھا؟
اصل میں فرامند کا معاملہ اس باعث بنا کہ تمہارے والد اپنے خیالات جو بہت پہلے سے ان کے ذہن میں تھے اپنی زبان پر لے آئے۔
کیسے خیالات؟
وہ سمجھتے ہیں کہ میں تمہارے اسٹیٹس اور دولت کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
कैसा स्टेटस?
इंजीनियर ने मुझे कहा कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ शादी के बाद ऑफिस में किसी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता हूँ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे इसमें नहीं आना चाहिए।
देखो मेरे डैडी ने जरूर गुस्से में आकर ऐसा कहा होगा। मुझे यकीन है कि डैडी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसीलिए कभी भी वहां वापस नहीं आऊंगा।
ये तो फिर बचकाना जिद हुई भाई।
नहीं, मैंने इस अरसे में तुम्हारे वालिद की बातों पर खूब गौर किया। सच तो यह कि मैंने उन्हें हक देता हूं कि मेरे बारे में इसी तरह से सोचे। वो तो क्या, हत्ता मेरे ख्याल में अगर तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचो तो हक बजाने भोगे। हक देता हूं तुम्हें मैं।
मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही।
हर दौलतमंद लड़की अपना रिश्ता मांगने वाले के बारे में सबसे पहले खुद से यही बात पूछती है कि ये लड़का मुझे चाहता है या मेरे बाप की दौलत को। अब ना कहना कि तुमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया आज तक।
मैंने तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती, थोड़ा बहुत जहन में ख्यालात आते थे लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती।
हत्ता अगर तुम अब भी मेरे बारे में इस तरह का सोच रही हो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि तुम और तुम्हारे वालिद पर साबित करूंगा कि इस रास्ते से मेरा ये इरादा नहीं था।
तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं, जरूरी है। हत्ता जरूरी है कि तुम भी मेरे लिए बातचीत से साबित करो। देखो यास्मीन, मैं अब कभी भी तुम्हारे वालिद की कंपनी में तो नहीं लौटूंगा। फिलहाल बेरोजगार हूँ लेकिन यकीन है कि ये हालत ज्यादा अरसे नहीं रहेगी। जब काम शुरू करूंगा तो मेरी तनख्वाह इतनी कम होगी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप जैसा घर बार नहीं बना पाऊंगा।
यह क्या कह रहे हो?
देखो यास्मीन, प्लीज मेरी बातें गौर से सुनो, मैं इस बात में बहुत संजीदा हूँ। जब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें मेरी तनख्वाह और मामूली जिंदगी के साथ गुजारा करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिद की दौलत हमारे घर आए। जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होंगे, लेकिन ये सख्तियाँ बर्दाश्त करोगी तो मुझ पर साबित हो जाएगा कि मुझसे प्यार करती हो। जानता हूँ कि शर्तें बहुत सख्त हैं लेकिन फौरन जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मेरी बातों पर खूब गौर करो। अगर इस नतीजे पर पहुँची कि इन शराइत पर मेरे साथ रह सकती हो तो बता दो ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आ सकूँ।
सलाम, बहुत खुश आमदीद।
सलाम अलैकुम।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लीजिए।
क्या खाओगी?
तुम्हारी आजकल नौकरी भी नहीं है और जेब भी खाली है, बेहतर नहीं था कि किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में जाते?
तुम भी सस्ते से खाने का ऑर्डर दो ताकि मेरी जेब पर बोझ न पड़े। क्या हुआ?
तुम्हें जो पसंद आया मेरे लिए भी ऑर्डर दे दो। कल डैडी जाके बेन्यामिन को ले आएंगे।
वाह भाई, सिर्फ बेन्यामिन को?
फिलहाल सिर्फ इसके लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके मम्मी से भी मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, शायद मम्मी भी आ जाए। अलबत्ता मैंने बेन्यामिन को खूब पढ़ाया, बताया कि उसे क्या करना है। वापस आएंगे तो तुम्हें तला दूंगी कि रिश्ता मांगने आ जाओ।
तुम्हें यकीन है?
तुम्हारी बातों से मजीद मुतमईन हो गई।
अच्छा, तो अपने बाबा से कहना उसे जल्द से जल्द दे।
अस्सलामुअलैकुम। तुम ठीक हो?
मुझे घर जाना है।
मैं गया था, डॉक्टर से वक्त ले लिया है। तुम चाहो तो मैं हर रोज डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। तुम्हारे खातिर मैं हर काम कर सकता हूँ समाना।
मेरी खातिर क्यों? तुम्हें अपनी खातिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
उस दिन तुम्हारे अब्बू ने कहा कि समाना तुमसे डरती है, तुम्हारे पास सुकून पाने के बजाय तुमसे डरती है। समाना तुम्हें सचमुच मुझसे डर लगता है?
हाँ, कभी कभी मैं वाकई डर जाती हूँ।
खुदा मुझे गारत करे, खुदा मुझे गारत करे। मैंने इन चंद दिनों में बहुत सोचा। तुम्हारे अब्बू सही कहते हैं, तुम्हें मेरे पास कभी भी सुकून नहीं मिला। मैंने हमेशा तुम्हें अजियत दी। अम्मी को जब पता चला कि हमारी लड़ाई हो गई है तो उन्होंने भी खूब डांटा।
तुमने उन्हें क्यों बताया?
मैंने नहीं बताया, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि वो खुद समझ गई।
तुम्हारे अम्मी अब्बू लोग ठीक हैं?
हाँ, लेकिन मेरा हश्र बहुत बुरा है। इन चंद दिनों में जो तुमसे नहीं मिला, यकीन हो गया कि तुम्हारे बगैर मेरे लिए जिंदगी गुजारना नामुमकिन है समाना।
इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाओगे तो ठीक हो जाओगे।
जानती हो मेरा मसला क्या है? मेरी मुश्किल ये है कि हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। हर रोज हर मिनट ये सोचता हूँ कि खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई मुश्किल पेश ना आ जाए। तुम्हारे साथ मसलन कोई तुम्हें तंग ना करे। और हाँ, ये मनफी सोचें खुद ब खुद मेरे जहन में आती है और फिर खुद से ज्यादा तुम्हें अजियत करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया।
तुम्हें मनफी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तल्ख हो जाएगी।
हाँ, अब मैं ये बात समझ गया हूँ। इत्तेफाक से कई दफा इंटरनेट में जाके इन मनफी ख्यालात के बारे में कुछ पढ़ा।
क्या पढ़ा?
बहुत कुछ पढ़ा। कुछ बातें अच्छी थी, रास्ता दिखाने वाली थी। मसलन लिखा था कि ये मनफी सोचें जहन में आने लगी तो जाके कुछ लिखें या पेंटिंग बनाएं।
कुछ ट्राई भी किया?
हाँ, कई पेंटिंग्स बनाई हमने, सब तुम्हारी, क्योंकि हमेशा तुम आंखों के सामने रहती हो। मैंने घर में तुम्हारी 100-100 पेंटिंगें बनाई हुई हैं, लेकिन सब बहुत बुरी हैं। मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, लेकिन दुनिया के बेहतरीन पेंटर भी तुम्हारा चेहरा तस्वीर में नहीं ला सकते, तो मुझ जैसा अनाड़ी तुम्हारी तस्वीर कैसे बना सकता है?
अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।
समाना, इन दिनों 2-3 दफा फराजात गया, उसी रेस्टोरेंट में जहां हमेशा जाते थे, और उस तख्त पर बैठे थे, मुसलसल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बार बार ख्यालों में देखता कि तुम मेरे सामने बैठी और मजे से कलेजी खा रही हो। आज मैंने जाके अपने दोस्त से गाड़ी ली ताकि दोनों साथ में फराजात चलें।
नहीं इस्माइल, अबू ने कहा है कि...
जानता हूँ। मैं उस दिन भी जब डॉक्टर का नंबर लेने आया था, उन्होंने तुमसे बात नहीं करने दी, लेकिन सोचा शायद आज के...
नहीं हो सकता।
कसम से शाम होने से पहले घर पहुंचा दूंगा तुमको।
कहा ना नहीं, मैं चलती हूँ। किसकी गाड़ी है?
ये गाड़ी बहनूत की है। अम्मी लोगों के सामने वाले हमसाये नहीं खरीदी।
शाम होने से पहले मुझे घर पहुंचना चाहिए, समझे?
यस मैडम।
मुझे यकीन है ये फानी का काम नहीं है।
तुम ये बात क्यों कर रहे हो? उसके पास इस काम का मुहर्रक भी था और कर भी सकता था। हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत भी है। तुम कह रहे हो कि उसका काम नहीं है, तो क्या छोड़ दें उसे?
मैंने कब कहा कि उसे छोड़ दें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तहकीकात को मत रोको।
आखिर किस लिए तहकीकात को इतना तूल दे?
देखो फानी बहुत जहीन आदमी है। अगर उसे बुजुर्ग मेर को मारना होता तो अपने खिलाफ इतने ज्यादा सबूत ना छोड़ता।
कुछ समझ है तुम क्या कह रहे हो? यानी चूंकि हमारे पास फानी के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत है तो वो कातिल नहीं है? ये क्या बात हुई यार?
शायद तुम्हें हैरान कुन लगे, लेकिन हाँ मेरा यही ख्याल है।
माफ कीजिएगा सर।
बताओ जाकिरी,
उस चेक को किसी ने कैश कराने की कोशिश की है?
किस चेक को?
वही चेक जो बुजुर्ग मेर के घर से चोरी किया गया था।
ये लो, गैब से गवाह आ गया। अभी मैं कातिल को 10 पस्ता लेके आता हूँ।